नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। एक कहानी मुझे याद आती है। एक संत थे जो शाम के समय स्नान संध्या के लिए गए थे अपनी पूजा के लिए, और जब वो पानी डाल रहे थे तो नीचे उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो डूब रहा था, उस बिच्छू को उन्होंने हाथ में लिया और जैसे ही पानी के साथ में उस बिच्छू को हाथ में उठाया तो बिच्छू ने डंक किया, तो इमीडिएटली उन्होंने बिच्छू को फिर से छोड़ा। बिच्छू फिर डूबने लगा, उन्होंने फिर उसको उठाया, फिर उसने डंक मारा। 3-4 बार ये हुआ। देखने वाले ने पूछा कि जब वो बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर बिच्छू अपना डंक करने का धर्म नहीं छोड़ सकता तो मैं उसको अपना बचाने का धर्म कैसे छोड़ सकता हूं। ये है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जो लोग हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन हम अपने जीवन में भी इसको ला सकते हैं। हम ऐसे स्पिरिचुअल कोशंट को अपना सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आज इसी बात को हम चर्चा करेंगे हमारे सीक्रेट में। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ है, मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
जैसे मैंने बात की, हमने बहुत कहानियां संतों की सुनी है इस तरह की शास्त्रों के अंदर, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए कि स्पिरिचुअली जो इंटेलिजेंट पीपल है, जिनका हाईएस्ट लेवल पर वो पहुंचे हैं, उनकी और क्या क्या निशानियां हैं और वो कैसे पहुंचे हैं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले।
सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको इस विषय पर बोलने के लिए वो शक्ति और प्रेरणा दे रहे हैं, और उसको फिर से धन्यवाद कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 21 साल से जुड़े हुए हैं। तो काफी हमारे वरिष्ठ भाई बहने जो अनेक सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिसमें हमारी वरिष्ठ दादिया है जो साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ रही है और मम्मा के साथ रहे हैं, जो सबसे टॉप योगीज रहे हैं, तो हमारे दादिया, वरिष्ठ भाई, दीदिया, इनके बहुत सारे अनुभव है। और एक आम आदमी उनको पागलपन ही कहता है उनकी, जैसे अभी आपको आपने जो कहानी सुनाई वो पागलपन ही लगेगा किसी को। तो जब कोई आपको पागल कहे ना, तो समझ लेना चाहे आप अच्छे रास्ते पर है। पागल व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसमें ये फर्क होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ना इतिहास की स्टडी करता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक पागल व्यक्ति है वो इतिहास को क्रिएट करता है। सो दीज आर द
बहुत बड़ी बात है, है ना, एक धुन है उनके, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू।
वही वो पागलपन ही है, ईश्वरीय नशा कहो या उसके प्यार में इतने खोए रहते हैं कि वो ईश्वर के समान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में निरंतर परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा को धन्यवाद इसलिए दिया और अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां पर हमारी बड़ी दादी थी जिसको हम प्रकाशमणि दादी जी के नाम से जानते थे। उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। एक घटना जो मुझे याद आ रही है कि माउंट आबू में बहुत कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो एक बार ऐसी ही कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कॉन्फ्रेंस में मेहमान आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है, तो दादी के ऊपर जिम्मेवारी काफी रहती थी। तो दादी बहुत बिजी थी, तो सभी डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट वाला भाई दादी के पास आया और दादी को पूछा कि दादी इतने सारे मेहमान आए हैं, हमको इनके लिए भोजन बनाना है, लेकिन सब्जी काटने के लिए हमको हैंड्स नहीं है और कोई आ नहीं रहा है सब्जी काटने के लिए। तो दादी ने सुना और दादी की मीटिंग चल रही थी, तो दादी वहां से मीटिंग दादी ने रोक दिया और दादी वहां से उठकर किचन में गई जहां सब्जी थी। दादी खुद वहां पर बैठी और चाकू लेकर सब्जी काटने लगी। अंतरराष्ट्रीय संस्था की चीफ है ना, वो चाहे तो किसी को बोल सकते थे कि आप जाके देखो, लेकिन खुद वहां से उठ गए, वहां बैठ गए और धीरे धीरे चारों तरफ आवाज फैल गई कि दादी खुद किचन में सब्जी काटने के लिए बैठी, क्योंकि कोई जा नहीं रहा है। जैसे दादी को देख के बहुत सारे लोग आए उधर और सब सब्जी काटने बैठ गए।
मतलब ये एक लीडर की क्वालिटी है जो कहकर नहीं कर एग्जाम्पल सेट कर रहा है।
लीडर सेट एग्जाम्पल बाय डूइंग। तो ये मैंने दादी के अंदर बहुत देखा, तो एक लीडरशिप जो अलग ही थी। मैं देखा कि विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट दादी इतना क्विक डिसीजन देना, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को संभालना इतने सारे देशों में, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो बहुत कुछ पावर चाहिए आपके अंदर. सो विदाउट स्पिरिचुअल पावर ये हो नहीं सकता है. और दादी के अंदर ये विशेषता मैंने देखी कि जब कोई नहीं कर रहा दादी खुद करेगी. ऐसे नहीं कि मैं चीफ हूं तो मैं आराम से बैठे रहूंगी, मैं दूसरों को ऑर्डर दूंगी, नहीं. और ऐसे ही हमने बहुत सारे और भी हमारे भाइयों में देखा. मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं को देखता था. वैसे भी डॉक्टर्स आम ग्रुप से हटके होते हैं,
उनको एक दर्जा मिला हुआ है ना. हाँ, कि ये है. एक स्टेटस है, या हम यू कहेंगे कि उनके लिए लोग ऐसा कहते हैं पहले से कि ये मतलब समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, ऊंचे हैं, इनकी डिग्री ऊंची है, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं.
अलग समझते हैं. और मैं भी उसमें आता था तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर बहुत ईगो था, है ना. कुछ डॉक्टर्स के अंदर ईगो होता है पोस्ट पोजीशन का. तो हमारे यज्ञ के एक भाई जिनका नाम था जगदीश भाई, मैं तब उस समय गुजरात में था, पता चला कि वो वहां आने वाले थे. तो मैं ड्यूटी करके आया था आश्रम में बैठ के मुरली क्लास में पढ़ रहा था, तब पता चला कि जगदीश भाई आए हैं करके. तो सभी भाई बहने भागते हुए उनके स्वागत के लिए नीचे गए. तो मैंने सोचा इतना क्या है, एक व्यक्ति आ रहा है उसके लिए इतना क्या है, वो हमारे जैसे
रैशनल थॉट है ना,
रैशनल थॉट है कि उसको इतना क्यों ये देना चाहिए. मैं ना वो एक्चुअली मेरा अहंकार था कि मैं नहीं जाऊंगा, ये सब जा रहे. तो वहाँ की जो इंचार्ज है, जो वहाँ पे बहुत सेंटर समाज है, वो गई. जैसे जगदीश भाई आए, हमारे वरिष्ठ भाई वहाँ के गए, स्टूडेंट सब गए, मैं नहीं गया. मैं अकेला बैठा रहा था सोफे पर. तो सभी ने स्वागत किया. मैंने कहा होगा कोई बड़ा ये, तो ठीक है वो होगा अपने, मैं अपने इसमें. तो मैं बैठ के ऐसे ही ध्यान कर रहा था. तो जब वो सबसे आगे थे और हाइट उनका काफी था, जैसे उन्होंने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद मैं सामने बैठा था. तो वो मेरे को जानते नहीं थे
जी,
लेकिन जैसे मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे जोड़े और मेरे को हाथ जोड़ के कहा ओम शांति.
मतलब
माना, आप सोचो
इतनी नम्रता,
इतनी नम्रता. सब लोग आपके आपको हाल डाल रहे, आपको पूछ रहे, और मैं उनको पूछ ही नहीं रहता है ना, मेरे अंदर से कि नहीं जाना है मेरे को ऐसे. लेकिन जैसे उन्होंने हाथ जोड़े तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को भी खड़ा होना पड़ा और मैंने हाथ जोड़ के ओम शांति कहा.
मतलब ये प्रैक्टिकल प्रूफ है सारे कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे धारण कर रहे हैं. हाँ, स्टडी क्या कर रहे हैं.
ये दोनों में मैंने ये फर्क देखा, एक तो अपने अहंकार के प्रति मेरे को पता चला, और ये दोनों इतने सीनियर इंटरनेशनल स्पीकर और बहुत सारे जगह पे लग गए हैं. लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे आप स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते, एक गुण आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत कठिन है, वो है नम्रता का गुण या निरहंकारिता का गुण. और इसका उदाहरण हम देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष होता है, जब वो फलों से भरपूर हो जाता है ना, तो वो झुकता है. ये बहुत अच्छा लक्षण है. और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो मुझे लगता है बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ये संपूर्णता के मार्ग में या इवन हमारे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न जो है वो अहंकार. भले हम स्थूल अहंकार को जीत लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार तो रहता ही है.
हाँ, वही बात मुझे लगती है कि जो आपने पिछली कड़ी में भी ये बात बताई थी कि बड़े बड़े लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है, खुशी नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि मेरा पोस्ट पोजिशन है, जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं कर सकते.
यस, ये बहुत बड़ा विघ्न है. मुझे यहाँ पे और एक बात याद आ रही है. ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडिंग फादर, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा ने अपने पूरे जीवन की जितनी भी कमाई थी वो सब यज्ञ में लगा दी, ट्रस्ट खोला, और वो ट्रस्ट उन्होंने 8 बहनों के नाम पर किया. और स्पिरिचुअली भी बहुत एडवांस थे, क्योंकि बहुत गुरु किए हुए थे, बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास था, और बिजनेस में काफी अनुभवी थे, तो लोगों की परख अच्छी थी. और बाबा को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो शिव बाबा का साकार रथ था, भागीरथ, जिसका गायन है, जिसमें स्वयं परमात्मा प्रवेश करते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा. लेकिन नेचुरली उनके अंदर एक ये भाव रहा कि ये सब शिव बाबा का है ना. जो दादियों ने कहानियां सुनाई कि बाबा खुद पेड़ पौधों को पानी देते थे, कभी रास्ता बनाना है तो बाबा खुद वहां पर खड़े होके मदद करते थे. मैंने दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल कि भले आपने दिया है, नहीं तो हम देखते हैं अभी ये टीका नहीं है, लेकिन कई लोग मदद करते हैं ना, तो मदद करने के बाद उनका नाम वहां पर आ जाता है
जी।
कि इन्होंने इतनी मदद की, लेकिन बाबा के अंदर हमने वो कहीं नहीं देखा, ऐसे लगा ही नहीं कि बाबा बिल्कुल नेचुरल रहते थे, हल्के रहते थे। ये है ना, इस बात को जीतना बहुत मुश्किल होता है।
पर कई लोगों के अंदर ये बिलीफ है कि हमारे पोजीशन के अनुरूप अगर हम काम नहीं करते हैं तो लोग हमें कीमत नहीं देते हैं।
ये बिलीफ उनके अंदर है जिनको दूसरा तरीका पता नहीं है मैनेजमेंट का।
हाँ।
क्योंकि आज तक हमने सुना है कि किसी को कंट्रोल में रखना है तो गुस्सा करना पड़ता है, रोब दिखाना पड़ता है, तभी लोग मानेंगे, और रोब दिखाने वालों का ही रिस्पेक्ट होता है। लेकिन यही फर्क है कि कॉमन बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी में टोटली अपोजिट है। स्पिरिचुअलिटी में आप जितना नम्र बनेंगे, पर इसके लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं। कई लोग दिखावा भी करते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। मेरे को तो एक याद आती है कहानी, किसी ने बहुत अच्छा कहा, एक ऐसे ही बहुत अच्छे स्पीकर थे, वक्ता थे, जिन्होंने बहुत सेवा की थी, तो उनके अंदर बहुत उन्होंने किया था, तो उनका परिचय दिया जा रहा था, तो बहुत सारा परिचय दिया। लास्ट में उस स्पीकर ने कहा कि आपने इतना सारा बताया, लेकिन मेरी नम्रता के बारे में भी थोड़ा बताओ ना। तो जब आपको लगता है कि आपकी विशेषता के बारे में बताना चाहिए, तो समझने का अभी तक आपने उसको जीता नहीं है
जी।
ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, और मेरे ख्याल से ये लास्ट स्टेप है इसको जीतने का। दादी को मैंने जब सवाल पूछा कि दादी ऐसा क्या आपने पुरुषार्थ किया कि आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया, तो दादी ने बहुत सारी बातें बताई। उसमें दादी ने मुख्य बताया, ये जो माया है या निगेटिविटी है या विकार है, इसकी जो जड़ है इसके, वो है मैं और मेरापन, मैं और मेरा, मैं सब कुछ हो, मैं नहीं होता तो इतना सब सेवा नहीं हो पाती है, मेरे बिगर ये कुछ नहीं चल सकता
जी।
मैं हूँ इसलिए इतना चल रहा है।
वाइफ जो होती है ना, वो हस्बैंड को यही कहती रहती है, मैं हूँ जो आपको झेल रही हूँ, बाकी तो कोई नहीं झेल सकता।
मैं ऐसा नहीं कहूँगा वाइफ को, हस्बैंड भी कई बार ऐसे बोल सकते हैं कि मैं घर को चला रहा हूँ, है ना, मैं संभाल रहा हूँ, दोनों की जरूरत है, लेकिन ये मैंपन जो है ना,
अंदर चला गया पूरी तरह से।
हाँ, और उल्टा मैं, एक सीधा मैं होता है, एक उल्टा मैं, तो ये उल्टा मैं जो है, ये माया का जितना भी पेड़ है, निगेटिविटी की जड़ में है, और स्पिरिचुअलिटी इसी को परिवर्तन करती है। मैं और मेरापन जब तक है, तब तक आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। दादी जानकी का जब वो टेस्ट किया डॉक्टर्स ने, ईईजी का, जिसमें दादी को अवार्ड मिला, तो दादी को ये पूछा कि दादी ये इतना बड़ा स्टेज आपने कैसे अचीव किया, तो दादी ने भी कहा कि बड़ी बड़ी बातें तो हमने जीत ली थी, लेकिन सूक्ष्म में, सटल में जो अहंकार रहता है ना, कि मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ, कि मैं अच्छी योगी हूँ, वो आपको ही पता रहता है, और किसी को पता रहता है। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कि कोई महिमा करता है ना तो चुप रहते, बोलते नहीं, लेकिन अंदर से खुशी हो रही होती है
जी,
आप
जी,
समझ रहे हैं। ये छिपाने में कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। कई लोग बोलते नहीं नहीं ये तो सब भगवान का है, वो करा रहा है, बोल रहे हैं लेकिन अंदर सूक्ष्म में स्वीकार कर रहे हैं। तो इसको भी जीतना बहुत मुश्किल होता है, ये लास्ट स्टेप है। अगर आपने इसको जीत लिया, कई लोग बोलते हैं हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हम तो निमित्त है, लेकिन निमित्त बनने में भी नहरापन चाहिए। ये निमित्त के आगे की स्टेज है,
वो बहुत सूक्ष्म है,
बहुत सूक्ष्म होता है, और इसको जीता है इसका प्रूफ है कि आपको कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। जो आपने कहा ना, हमारा महत्व कम हो जाएगा
जी।
कई लोग अपना महत्व रखने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि जब तक ये पोस्ट नहीं तब तक मेरा कोई रेस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रहेगा, या मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरा तो सब स्टेटस चला जाएगा, मेरा महत्व कम हो जाएगा लोगों के नजरों में।
और ये भी है कि लोग हमारा फायदा उठा रहे,
फायदा उठाएंगे और महत्व कम हो जाएगा। तो आपने सूक्ष्म अहंकार को जीता है, उसका प्रूफ है कि आपको कभी भी ये विचार नहीं आएगा कि आपका महत्व कम हो गया है, और आपको अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। आपने उदाहरण दिया, वो महाराष्ट्र के संत थे, वो भी सुबह स्नान करने जाते थे, उसके ऊपर थूका एक व्यक्ति ने जानबूझ करके, इसको गुस्सा आएगा करके, वो कुछ नहीं बोले, गए स्नान करके वापिस आए, फिर थूका, फिर गए, फिर ऐसे कितनी बार करने का।
हम गांधी जी का भी ये बहुत सुना है,
उस व्यक्ति ने उस दिन ऐसे कहते 108 बार स्नान किया, तो आखिर में थूकने वाला थक गया। उसने पूछा कि मैं इतनी बार थूक रहा हूँ, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, आप फिर स्नान करके आते हो? कहते मैं आपका कितना धन्यवाद मानूं, आज एकादशी का दिन है, सोमवार का दिन है, आपके वजह से मेरा 108 बार स्नान हो गया।
ओहो,
आज की दुनिया में आप इसको इम्प्रैक्टिकल भले कहो, रैशनल लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे
जी।
लेकिन यहाँ पर मैं उस बात में नहीं जाके मैं ये कह रहा हूँ कि सूक्ष्म अहंकार जो है ना, अपने विकारों को जीतना, वो एसक्यू का हॉलमार्क है। जो स्पिरिचुअली एडवांस सोल होते हैं वो अपने आप को, उन्होंने इन विकारों को जीता। ऐसे नहीं कि वो डिफेंड नहीं कर सकते थे, क्या वो जवाब नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं।
कई लोग इसको कमजोरी समझते
हैं। कमजोरी समझते हैं, इट्स नॉट अ कमजोरी। सहन करना एक कमजोरी नहीं है, सहन करना एक शक्ति है। सिर्फ इतना देखना चाहिए कि अपने को कोई नुकसान न हो। हम थोड़ा बैलेंस में बोलते कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये एपिसोड हम सब वो अनुभव के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दादी जानकी जब विदेश में, दादी जानकी ने बहुत सेवा की, तो उनको एक सभा में बोला, क्योंकि आप ओम शांति करते रहते हैं, समझो किसी ने मारा तो आप क्या करोगे। अभी ये सवाल बहुत ऑफेंसिव है एक स्पिरिचुअल लीडर को, ये सवाल और पूछने वाले पूछते हैं। तो हजारों की सभा थी और दादी जानकी ने सवाल किया, कौन है, किसकी हिम्मत है इस सभा में आकर मेरे को मारने की। दादी का जवाब ये था कि किसी की हिम्मत है यहाँ पे मारने के। पूरा साइलेंस में चला गया। फिर दादी ने बोला, कोई मुझे मारेगा ही क्यों, या तो मेरी कोई गलती होगी, जब मेरी गलती होगी तभी मारेगा ना, और अगर गलती नहीं हुई है फिर मार रहा है तो समझने का वो पागल है, तो मैं अपनी अवस्था को क्यों खराब करूं। लुक एट द आंसर, पहले शक्ति स्वरूप दिखाया और फिर समझदारी का जवाब है।
दो स्वरूप, पहले शक्ति स्वरूप।
तो ऐसे सवाल पूछने वाले भी होते हैं, पर जो स्पिरिचुअल एडवांस लोग होते हैं, दे आर रेडी विद दैट। आप कितने लोगों का, मैं आपका उदाहरण दूं, गांधी जी का आपने नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ। गांधी जी के ऊपर बहुत लोगों का गुस्सा इसलिए था कि वो अहिंसा का मैसेज देते थे, और कई लोग कहते थे कि नहीं, कब तक सहन करने का है ना?
जी, जी।
तो एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा था गांधी जी के ऊपर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। तो एक बार वो बोट से जर्नी कर रहे थे, तो गुस्सा तो आ रहा था, अभी क्या करे। गांधी जी कुछ अपना पढ़ रहे थे, तो इसको गुस्सा आया, तो इसने क्या किया, 2-3 पेज के ऊपर बहुत सारे अपशब्द लिखे गांधी जी को, जिससे कि गांधी जी को गुस्सा आए, और उसको पीन लगा के वो भागते हुए गया और उनके टेबल पर डाल के दूर आके फिर देखता रहा
जी।
तो गांधी जी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वो कागज को देखा, व्यक्ति को देखा, वो गांधी जी को लगा शायद मेरे को कुछ वो देना चाहता है। उसने पढ़ा बहुत शांति से, अभी ये देख रहा है व्यक्ति कि अभी गांधी जी को गुस्सा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो लिखा है कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे अपशब्द लिखे, गांधी जी के चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं, पूरा पढ़ा एक एक शब्द। पूरा पढ़ने के बाद गांधी जी उठे, वो कागज को लेके उसके पास गए और उसको बोले, भैया ये कागज तो मेरे कोई काम का नहीं, कि पिन मैं रख लेता हूँ, मेरे को काम में आएगा।
बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल क्वेश्चन बड़ा हुआ है ना।
स्पिरिचुअली एडवांस लोग आर लाइक दिस, ठीक है ना। फिर वो ब्रह्मा बाबा हो, प्रकाशमणि दादी हो, दादी जानकी हो, या महात्मा गांधी जी हो, इन सबकी एक पावर रहती है, और ये पावर इन्होंने परमात्मा से प्राप्त की है। ये लोग भी साधारण थे, लेकिन विद साधना और तपस्या इन्होंने की है
जी।
तो हम सब भी अगर इस तरह से साधना करें और ऐसी आत्माओं का संग करें, तो हम भी अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं।
बहुत सुंदर, बहुत खूब बताया। हमारा ये पूरा के पूरा एपिसोड ना, पिछले कई कड़ियों से IQ, EQ, SQ इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने इतने सारे उदाहरण देकर हमको जो समझाया है, डेफिनेटली मुझे और दर्शकों को आपने प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने के पहले हम एक मेडिटेशन जरूर लेंगे।
हम सब अभी ध्यान करेंगे, जिसमें कि हम अपने अंदर जो माया का बीज है, मैपन और मेरापन, उसको दूर करने के लिए परमात्मा की मदद से अपने अंदर शक्ति भरेंगे। स्वयं को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक हमारे शरीर के अंदर दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा और सिर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाएंगे और स्वयं को महसूस करेंगे कि एक सुंदर दिव्य प्रकाश चमक रहा है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूं। शरीर से बिल्कुल अलग हूं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, परंतु मैं एक अविनाशी चैतन्य सत्ता हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्की हूँ। जैसे मैं एक दिव्य सितारा हूँ, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा वो भी एक दिव्य प्रकाश है, और उनसे शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है। ये प्रवाह मुझे भरपूर शांति का अनुभव कर रहा है। मैं उनकी संतान शांत स्वरूप हूं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि स्पिरिचुअली एडवांस लोग, आध्यात्मिक बुद्धि अंक वाले लोग, जिनका एसक्यू बहुत हाई है, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति के आधार पर अपने अंदर जो उल्टा मैं और मेरा पन है उसको जीता हुआ है। ये आत्मा इसका अनुभव कर रही है कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान गुण और शक्तियां है, विशेषता है, उसका स्रोत स्वयं परमात्मा है। मेरे द्वारा जो भी श्रेष्ठ कर्म हुए हैं उसका कर्ता भी स्वयं परमात्मा है। उसकी प्रेरणा से, उसकी शक्ति से ये सब सेवाएं मैं कर पा रहा हूं। शिव बाबा का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ये दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्रदान की। मैं हमेशा इसके प्रतिलिए आपसे धन्यवाद और हमेशा आपको दिल से शुक्रिया अदा करता रहूंगा। ये दिव्य ज्ञान और शक्तियां आपके द्वारा दी हुई है और आपके सभी बच्चों को प्राप्त हो, यही मेरी शुभ भावना है। आप करम करावन हार है। आपने इस आत्मा के द्वारा अभी तक अनेक आत्माओं का कल्याण किया है, ऐसे ही आप इस आत्मा के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करते रहे, ये मेरी शुभ भावना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक ही इच्छा थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा मिल जाए। जो पाना था वो पा लिया। शिव बाबा ये शरीर मन बुद्धि संस्कार आत्मा ये सब आपके हैं। आप इसको इस्तेमाल करो, आप इसके द्वारा विश्व का कल्याण करो। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे अंदर का अहंकार समाप्त होते जा रहा है। सब मेरापन जो भी है वो एक मेरे शिव बाबा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा का बन चुका, अब वो जैसा चाहे चलाना चाहे मुझे चलाए, जहां बिठाए जो खिलाए मुझे मंजूर है। मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा की शक्तियां मेरे द्वारा आपे ही सारे विश्व में फैल रही है। फिर से एक बार परमात्मा का दिल से धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं शांत हूँ और प्रसन्न हूँ, बिल्कुल हल्का हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।
ओम शांति। बहुत ही प्रेरणा से भरे अनुभव आपने आज हमारे साथ जो शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
हमने देखा कि शायद हमारे अंदर EQ बहुत होगा, लेकिन SQ यानी आध्यात्मिकता को बढ़ाना आज वर्तमान जीवन की आवश्यकता है। आप जरूर इस बात को समझ रहे होंगे और इसका अनुभव भी आप जरूर करना। आज हमारे साथ जो भी अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं डॉक्टर सचिन ने, शायद हमने सुने होंगे, पढ़े होंगे इतिहास के अंदर, हमने बहुत कुछ इसके बारे में जाना होगा, लेकिन ये बहुत दिल के अनुभव थे, उनके अपने अनुभव थे जो उन्होंने शेयर किए हमारे साथ में। हमें इससे प्रेरणा जरूर मिलेगी। आपके कोई भी सुझाव, कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे फोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नए सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।